నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత్ సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. గర్భాశ్రీమ భాగవతం సాత్వా స్కంద 15వ అధ్యాయ. అధ్యాయ కా నామ హై సుసంస్కృత మనుష్యో కే లియే ఉపదేశ. శ్లోక సంఖ్య 23. ఆనిక్షిక్యా శోక్మోహో దంభం మహదుపాసయా యోగాంతరాయత్న మౌనేన హింసాం కామాయ నిహయా. అనువాద అనంత తాత్పర్య ఏసీ భక్తి వేదాంత్ స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ జీకే ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఆన్మిశక్య భౌతిక తథా ఆధ్యాత్మిక విషయం మే విచార విమర్శ కర్కే శోక్ శోక్ మోహో తథా మోహో దంభం మిథ్యా అభిమాన్ కో మహత్ వైష్ణవ్ ఉపాసయా సేవా ద్వారా యోగ అంతరాయాన యోగ కే మార్గ మే అవరోధో పర మౌనేన మౌన్ సే హింసా ఈర్ష్య కామ్ ఆది ఇంద్ర తృప్తి కే లియే అనిహయా బినా చేష్టా కే. అనువాద్ అధ్యాత్మిక జ్ఞాన్ కి వివేచన్ సే శోక్ తథా మోహ పర్ విజయ ప్రాప్త్ కీ జా సక్తీ హై. మహాన్ భక్త్ కి సేవా కర్కే అహంకార రహిత్ బనా జా సక్తా హై. మౌన్ రహ కర్ యోగ మార్గ్ కే అవరోధో సే బచా జా సక్తా హై. ఔర్ ఇంద్ర తృప్తి కో రోక్ దోనే సే ఈర్ష్యా పర్ విజయ పాయీ జా సక్తీ హై. బురాయీ హమారే పీచే. అధ్యాత్మిక జ్ఞాన్ కి వివేచన్ సే శోక్ తథా మోహ పర్ విజయ ప్రాప్త్ కీ జా సక్తీ హై. మహాన్ భక్తి సేవా కర్కే అహంకార రహిత బనా జా సక్తా హై. మౌన్ రహకర్ యోగ మార్గ్ కే అవరోధో సే బచా జా సక్తా హై. ఔర్ ఇంద్ర తృప్తి కో రోక్ దేనే సే హీ ఈర్ష్యా పర్ విజయ పాయీ జా సక్తీ హై. తాత్పర్య, यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक का मोह से प्रभावित होना और मित्र पुत्र के लिए रोना स्वाभाविक है, लेकिन भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक पर विचार करने से वह शोक तथा मोह पर विजय पा सकता है. जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म विदस्य च. चूंकि आत्मा का देहांतर होता है, अतः जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य में यह शरीर छोड़ना है और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है. इसके लिए यहां शोक करना व्यर्थ है. इस अतः कृष्ण कहते हैं धीर सत्रिणा मोहयति. जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के देहांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता. ओम अज्ञानस्य मिलन्दस्य ज्ञानञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, హరే రామ్ 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 హరే హరి. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. హరే కృష్ణ. तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश. कौन बोल रहे हैं श्लोक? नारद मुनि बोल रहे हैं. किसको बोल रहे हैं? और ईश्वर महाराज के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे शिष्यों को क्या होना चाहिए, परफेक्ट जेंटलमैन। तो अगर परफेक्ट जेंटलमैन बनना है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है, आन्विष्ठिक्या शोक मोह दम्भम महद उपासया। अध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है, मौन रहकर योग के अवरोधों से बचा जा सकता है, और इंद्र वृत्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। तो मुख्यतः चार विषयों पर श्लोक में बोला जा रहा है। शोक और मोह को एक विषय लिया गया है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान पर विवेचना करके, दम रहित हो सकते हैं महत यानी कि वैष्णवों की सेवा करके, और योग में आई हुई बाधाओं को पार कर सकते हैं मौन रह के, और ईर्ष्या से या हिंसा से मुक्ति पा सकते हैं इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास न करके। शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में केवल शोक के ऊपर ही फोकस किया है, तो हम भी केवल इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। देखते हैं कितना समय हमें अलाउ करता है। हम सब अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं कि हमें बहुत शोक का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के जीवन में आया कभी ऐसा शोक होना, शोक का सामना करना पड़ता है? और शोक एक पॉजिटिव इमोशन है कि नेगेटिव इमोशन है? साधारणतः ये नकारात्मक एक भावना है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि शोक करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। बोलेंगे शोको नश्यति धैर्य, शोक करने से धैर्य समाप्त हो जाता है। शोको नश्यति श्रुतम, जो कुछ भी हमने सुना पाया उसका नाश हो जाता है। शोको नश्यति सर्व, सब कुछ नाश कर दिया। नास्ति शोको समो रिपु, शोक के समान कोई शत्रु नहीं। इसी ढंग से गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, कुतः तम कश्मलम इतम विश्व समुपस्थितम। अर्जुन को भगवान जानते हैं कि ये गंदगी से क्या मतलब, ये शोक कहां से ले आए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इससे मुक्ति पाना हम सबके लिए, इसको कैसे डील करना है ये बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक विषयों की विवेचना करके। एक बार एक व्यक्ति गांव में भागवत सप्ताह दे रहा था, बहुत पहुंचे हुए वो स्वामी महाराज थे। तभी भाग एक व्यक्ति सामने से आया, बोले महाराज बैल कुएं में गिर गया। समझा बैल गिरे या गाय गिरे, भागवत कथा कोई रोक नहीं सकता। बोले महाराज आपका बैल गिरा है। तुरंत व्यास से उछल के भागे। तो यही होता है, हम दो उपदेश तो बड़े आसानी से दे सकते हैं। उपदेश तो हिरण्यकश्यप ने भी दिया अपनी भाभी को, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, बहुत सुंदर उपदेश दिया उसने आत्मा और शरीर पर विवेचना की। और जब आत्मा शरीर पर विवेचना की, तो अगर उस ऊपर से हटा दें श्री हिरण्यकश्यप को वाच, तो लगेगा प्रहलाद वाच। बिल्कुल सेम श्लोक जो प्रहलाद महाराज ने बाद में बोले, लेकिन बोले किसने, हिरण्यकश्यप ने। तो हम देखते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की विवेचना से हमें सहायता मिलती है। फिर भी आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के अलग अलग चरित्रों से, कैसे भक्तों के जीवन में भी शोक में परिस्थितियां आती हैं। हम जब भक्ति प्रारंभ करें तो हम ये ना सोचे कि अब तो सब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार जब भक्त लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया गृह प्रवेश करवाते हैं, हमसे निवेदन करते हैं, आइए प्लीज फॉर्म रखिए, अच्छा रहेगा, शुभ हो जाएगा। हम जाते हैं तो बुरा मत मानिया, कहते भी दुख हो रहा है कि कई बार परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जिस उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस चलता ही नहीं। भक्तों ने खूब कीर्तन भी किया, उसके बाद ही बिजनेस चला नहीं। गृह प्रवेश में भी भक्तों ने कीर्तन किया, लेकिन कुछ उसके बाद अजीब अजीब घटनाएं हो रही है घर में। तो भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या, सब कुछ ठीक किया फिर भी हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? तो ये भौतिक जगत की संरचना ही ऐसी है कि यहां पे हर परिस्थिति में शोक शोक, पदम पदम यत विपदम, दुख में परिस्थितियां आती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यहां तक कि भक्तों के लिए भी। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके पहली बार जब बंगाल में आए, तो विद्या वाचस्पति घर में आए, सबको खबर फैली महाप्रभु आ गए, गौरांग रिमाई आ गए, सब लोग गंगा पार करके कृष्ण भीड़ की भीड़ वहां पर आ गए, और सब लोग विद्या वचन सिद्ध करे, कहां है गौरांग महाप्रभु, कहां है? और महाप्रभु अभी दर्शन नहीं दे रहे, तो सब लोग इतने गुस्से में आ गए विद्यावाचस्पति जी से कि क्या तरीका है, दर्शन क्यों नहीं करने दे रहे, वो क्या करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जन्माष्टमी में 2.5-3 लाख इकट्ठे आ जाते हैं पूरे दिन में, और VIP गेट पे यहाँ पे इतना रश होता है, वॉलंटियर्स बेचारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, लोग भी भक्त हैं ये भी भक्त हैं, लेकिन बोले कैसे अंदर जाने दो, दर्शन करने दो। तो कई बार ही विद्यावाचस्पति भगवान ने कितनी कृपा की उनके आगे घर में रहे, तो कई बार ही भगवान की कृपा मिलती भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे भक्त बड़े प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे, वाह 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 भगवान की कृपा मिल गई। हो सकता है किसी एक भक्त को भगवान की कृपा मिल रही हो और दूसरे भक्तों को क्रोध आ रहा हो, और बेचारा वो भक्त परेशान है, उसको भी क्रोध आ रहा है कि उनके क्रोध को देखे मुझे भी क्रोध आ रहा है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस भौतिक जगत में। अगर हमें चाहिए बिल्कुल शुद्ध आनंद बिना क्रोध के और बिना शोक के, वो इस संसार में संभव नहीं है, वो तो केवल आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। इसलिए हमें कमर कस के तैयार रहना चाहिए। कृपया करके सब थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, यहां भी स्पेस खाली पड़ा है। आवाज पीछे आ रही है, आप आगे आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विशेषकर पांडवों के जीवन में है ना, जब भी भक्तों के कष्टों की बात होती है तो लोग पांडव का उदाहरण देते हैं, और पांडवों में विशेषकर जो चार मुख्य माताएं हैं, द्रौपदी, उत्तरा, कुंती और गांधारी, जिसका हम देखेंगे अर्जुन, युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज और कुछ चरित्र भागवत में जितना समय करेगा हम उसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन भक्तों के जीवन में शोक में परिस्थितियां आई और कैसे इन्होंने शोक से डील किया। जैसे कि उत्तरा माता को लेते हैं, उत्तरा माता का विवाह 14 वर्ष की आयु में हो गया, किसके साथ, अभिमन्यु के साथ, और कुछ ही समय के बाद वो विधवा हो गई। अभिमन्यु को बहुत क्रूरता से उनका वध हुआ, और उत्तरा के गर्भ में उस समय परीक्षित महाराज थे और उनके पति की मृत्यु हो गई। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं 14 वर्ष की बालिका के साथ ये हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भागवत में तात्पर्य में लिखते हैं कि उत्तरा हर दृष्टि से बड़ी सौभाग्यशाली थी। कैसी सौभाग्यशाली थी, बोले हो किसकी माता थी, वो इतने महान भक्त की माता, किसकी पत्नी थी, इतने बड़े योद्धा की पत्नी, किसकी पुत्री थी, द्रुपद की, और कृष्ण से पूरा उसकी संबंध था, तो इतनी सौभाग्यशाली है। और देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां भी हैं। तो इस भौतिक जगत में अगर सौभाग्य का भी उजागर होता है तो साथ साथ दुर्भाग्य का उजागर भी होता है। इस संसार में हर चीज मिश्रित है, प्रभुपाद बोलते हैं ये दुखालय है या मिश्रित सुख है। मिश्रित सुख का अर्थ है कि अभी थोड़ा सा सुख है, बाद में वो दुख के रूप में आना ही वाला है जिसको हम देख नहीं पा रहे। तो उत्तरा माता का सौभाग्य भी उजागर हो रहा है और साथ साथ दुर्भाग्य का भी उजागर हो रहा है। लेकिन उत्तरा माता ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कैसे शरण ली, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मत्र छोड़ा तो भाग के वो कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, और जब उनके पुत्र परीक्षित महाराज एकदम मृत्यु के कगार पर खड़े थे, भागवतम का संदेश समाप्त हो गया, तक्षक सर आने ही वाला था उनको काटने के लिए, उत्तरा अपने पुत्र के पास गए, रोते हुए नहीं, हाय मेरा पुत्र गया, बचाओ बचाओ क्या हो गया, मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं, नहीं, वो परीक्षित के पास गई और बोले कि शरीर छोड़ने से पहले जल्दी से बता दो, जाओ क्या अमृत आपने ग्रहण किया है, कुछ तो अमृत देके जाओ, जो कि आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना और उससे बना बृहद भागवतामृत। तो देखिए ये उत्तरा माता का चरित्र है, किस ढंग से शोकपूर्ण परिस्थितियों से उन्होंने कृष्ण और कृष्ण के संदेश की शरण ली। फिर हम देखते हैं द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म मां के गर्भ से तो हुआ ही नहीं, द्रौपदी कैसे प्रकट हुई, यज्ञ कुंड से, और प्रारंभिक अवस्था से बहुत सुंदर और सुशील। आज द्रौपदी कितनी सौभाग्यशाली है, उनका विवाह किससे हुआ, महान भक्त अर्जुन से, लेकिन उसी विवाह के दिन से ही दुर्भोग्य की द्रौपदी के ऊपर दुखों की कड़ी शुरू हो गई। जब उनका विवाह के लिए उन्होंने कर्ण को तिरस्कार किया, कर्ण को द्वेष हो गया, दुर्योधन बहुत द्वेषी हो गए। अच्छा जब द्रौपदी को विवाह करके लाए पांडव, तो उन्होंने मां से बोला कि मां हम भिक्षा लेके आए हैं, भिक्षा सबसे पहले सबसे घर में सबसे बड़े व्यक्ति को देनी चाहिए। द्रौपदी कुंती महारानी स्नान कर रही थी, बोला आपस में बांट लो। अब वैदिक काल में एक बारी मां से जो शब्द निकले उनके मुख से वो पत्थर की लकीर है, यहां तो आजकल स्थिति बिल्कुल बदल गई है। बोले ठीक है, शेयर करना है तो ठीक है, द्रौपदी की स्थिति देखिए क्या होगी, उनके पांच पांच उनके पति हो गए। उसके बाद पूरी राज्यसभा में उनका उनका कितना अपमान हुआ, उनका चीरहरण हुआ पांच पतियों के सामने। पांच पति भी साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े शक्तिशाली योद्धा, शक्तिशाली योद्धा नहीं, महान भक्त। इसके अलावा पूरी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि विदुर, सबके सब धर्माधिकारी, महाजन, भीष्म पितामह सब उपस्थित हैं, लेकिन द्रौपदी का अपमान किया गया। कर्ण ने उनको बोला तुम वैश्या हो, दुशासन ने उनके उनकी साड़ी उतारने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने पूर्ण रूप से गोविंद की शरण ली और भगवान साड़ी बन के आए और उनकी रक्षा की। ऐसे ऐसे देखते हैं जब द्रौपदी वनवास में थी तब जयद्रथ ने उनका अपहरण कर लिया, और जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया और वो युधिष्ठिर की पटरानी करने को तैयार ही है तभी अश्वत्थामा ने उनके पांच पुत्रों को बड़ी क्रूरता से मार दिया, एक के बाद दुख, एक के बाद एक। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी साधारण व्यक्ति भक्ति छोड़ देगा, यार बहुत हो गया है, क्या हो रहा है भगवान साथ साथ में हमारे घूम रहे और हमारे जीवन को पता नहीं क्या बना दिया आपने। लेकिन द्रौपदी ने एक बारी भी किसी पे उंगली नहीं उठाई और भगवान के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया कि मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो। इसके विपरीत देखते हैं भागवत में छठे स्कंध में राजा चित्रकेतु की कथा आती है। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां लेकिन वो निसंतान और बड़े दुख में रहते थे। अंगिरा ऋषि आए, बोले क्यों दुखी हो, अपने दुख का कारण बताया। बोले ठीक है संतान हो जाएगी लेकिन वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। बोले कोई बात नहीं संतान तो दो। तो एक फ्रूट दिया, फल दिया, उन्होंने अपने सबसे युवा पत्नी कृतद्युति को दे दिया, वो गर्भवती हो गई और वो बहुत प्रसन्न हो गए। अब कृतद्युति गर्भवती हुई है और बाकी रानियों में द्वेष उत्पन्न होना शुरू हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक जगत की प्रकृति है ना, एक विषय है जो दूसरे को, एक को आनंद देते हैं दूसरे के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट थी ना, नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड। और बाकी रानियां बड़ी परेशान और राजा पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है अपनी सबसे छोटी रानी के प्रति, बाकी रानियों को नेग्लेक्ट कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में प्रेम और मित्रता करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी तो लिमिटेशन है, इतनी तो सीमाएं हैं। अगर किसी से कोई व्यक्ति प्रेम या मित्रता करने का प्रयास कर रहा है उस पर थोड़ा सा भी अपना शक्ति और समय लगाता है बाकी चीजों से नेग्लेक्ट हो जाती है और बाकी लोग उससे प्रभावित होते हैं। जब बाकी लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो इस व्यक्ति पे पूरा प्रेशर पड़ता है, अरे भैया मैं क्यों इतना समय शक्ति यहां दे रहा हूं, इसके कारण इतना नुकसान हो गया। तो खुलकर पूरे हृदय से कोई इतना मित्रता कर सकता है ना प्रेम कर सकता है। चित्रकेतु के साथ भी यही हुआ, छोटी अपने सबसे युवा पत्नी के साथ वो ज्यादा उनको ध्यान दे रहे थे, बाकी पत्नियों को उन्होंने उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी और जो बाकी पत्नियां हैं उनके अंदर इतनी ईर्ष्या आ गई कि अब उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी कि इस ये जो छोटी संतान उत्पन्न हुई है ये हमारे दुखों का कारण है और कृतज्योति को कह रही है कि यही संतान मेरे सुख का कारण है। और अब वो रानियों ने सबने मिलकर योजना बनाकर एक छोटे से बालक को इतनी निर्दयता के साथ जहर खिला दिया। अब वो रानियां भी अच्छे चरित्र की थी, ऐसा नहीं कि वो राक्षसी थी, पूतना के समान पिशाचनी थी, अच्छे परिवार से थी, राजकुमारियां थी। अब देखिए कि स्वार्थी होकर व्यक्ति की मति कैसे मारी जाती है कि वो उसने उन्होंने छोटे से बालक को इतनी निर्दयता से उसका वध कर दिया। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब उस छोटे बाला का वध हुआ तो कृतद्युति और चित्रकेतु की बुरी हालत हो गई और उन्होंने ऐसा विलाप किया, ऐसा शोक किया और आकर उन्होंने बोला अहो बालिश विधाता, ये जो विधाता है ये भगवान है, बच्चा है क्या, मूर्ख है क्या, इनको ये भी नहीं पता भगवान को कि पिता के सामने संतान की कभी मृत्यु होती है और अगर ये कर्मों का खेल है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या है, कर्मों के फल ही सब कुछ है तो फिर हम भगवान को क्यों माने। तो इस तरह से वो विलाप करने लगे और तभी वहां पर अंगिरा ऋषि आते हैं नारद मुनि के साथ और नारद मुनि जी उस बच्चे को जीवित करते हैं, वो बच्चा कुछ दिव्य संदेश देता है और फिर उसके बाद नारद मुनि बहुत ही कड़क संदेश देते हैं चित्रकेतु को और उस कड़क संदेश के साथ क्या के नाम में चले जाते हैं ये कहते हुए कि इस पे अब आप मनन करो। देखिए आध्यात्मिक विषय की विवेचना, नारद मुनि ने संदेश दिया और बोला इस पे आप मनन करो, चित्रकेतु ने इस पे मनन किया और इसके बाद वो महान भक्त बने। तो ये एक भौतिक जगत की प्रकृति है। इसके बाद हम देखते हैं और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अर्जुन जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में जो जब भी किसी पे कोई शोक आता है, दुख आता है, तो वर जी बहुत निपुण है भगवान को आरोप लगाने के लिए, है ना, भगवान है ही कहां, आप हो ही नहीं, या भक्तों को आरोप लगाने के लिए कि आपने मुझे किन परिस्थितियों में फंसा दिया। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा व्यवहार नहीं करते। हम देखते हैं अर्जुन और युधिष्ठिर, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन ने बहुत शोक किया। तो किसी बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि अर्जुन का शोक करने का समझ नहीं आया, पूरी गीता का संदेश सुन लिया उसने और 18 अध्याय बोल दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसाद अपने उच्यते, सब कुछ सब दूर हो गया मोह वगैरह। मोह का मतलब यह है कि अपने आप को शरीर मानना, शरीर से जुड़ी संबंधियों को अपना मानना, बोले सब दूर हो गया। तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन ने इतना शोक क्यों किया? तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा क्या उत्तर देगा? पूरा संदेश सुनने के बाद, गीता का उपदेश सुनने के बाद अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन शोक क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं गीता क्या हो गया? हमारी स्थिति दिखाने के लिए सुनने के बाद में हम नहीं मान समझते। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता ही होता है बहुत। तो थ्योरी चर्चा करके टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधा प्रैक्टिकल की बात करें। हैं स्नेह के कारण, बिल्कुल ठीक बोला। स्नेह भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि स्नेह खत्म हो जाए, सख्त हो जाओ, सूखे हो जाओ, कोई इमोशंस नहीं। ये बड़ी गलत फहमी है कि भक्ति में इमोशंस का स्थान नहीं है। एक है अफेक्शन और एक है अटैचमेंट। तो स्नेह होना स्वाभाविक है। अपने पुत्र से भी स्नेह नहीं होगा कि जा तू जो शरीर है जा खत्म होना है जा क्या हो गया, आत्मा जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से चाह। अभी अभी सुना मैंने भगवान से श्लोक याद भी है। नहीं, ये स्नेह नहीं होना बहुत कठोर हृदय है। स्नेह है और दुखी भी हुए, लेकिन अर्जुन के शोक की क्या खूबी है, अर्जुन ने शोक किया लेकिन उस शोक से उसने सेवा नहीं रोकी। शोक भक्तों के शोक में भक्त लोग सेवा नहीं रोकते बल्कि और उत्साह से सेवा करते हैं, और दूसरा भक्तों के शोक में वो कृष्ण को आरोप नहीं लगाते या भक्तों पे आरोप नहीं लगाते। ये अर्जुन का शोक था। उन्होंने नहीं बोला भगवान को मैं तो ममा ही करा था लड़ाई लड़ने के लिए, कहां फंसा दिया, देखो मेरा नया बिल्कुल जवान बेटा चला गया, आप तो आराम से बैठे हो यहां पे, उपदेश देना तो बड़ा आसान है, मैं तो शुरू से ही मना कर रहा था, मैं तो बूढ़े विश्व पिता को नहीं माना चाहता था और आपने जबरदस्ती पता नहीं क्या मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मेरा ही बेटा सबसे पहले मर गया, ये क्या है आपका, है ना, बड़ा पूरा अधिकार था। रो रो कर आराम से कृष्ण को गालियां दे सकते थे कि तुम मथुरावासी होते ही ऐसे हो, कह सकते थे आप। उसने नहीं किया, उसने बिल्कुल, हालांकि उसने शपथ ले ली कि अगले दिन संध्या आने से पहले जायदाद का वध करूंगा और भगवान ने पूरी उसकी सहायता की। हालांकि दो अक्षौणी सेना का उसने वध कर दिया लेकिन जायदाद को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति से सूर्यास्त करवा दिया, सूर्य अस्त हो जाओ, सूर्य अस्त हो गया, जायदाद नाश्ता हुआ बाहर होया, फिर से सूर्य को उदय करवा दिया और अर्जुन ने मार दिया, है ना। तो भगवान ने छोड़ा नहीं, भगवान ने पूरा साथ दिया अर्जुन का और अर्जुन ने भी पूर्ण रूप से भगवान की शरण ली। तो शोक होता है लेकिन शोक में हम भगवान को आरोप नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण नहीं छोड़नी चाहिए और उत्साह से सेवा करते रहनी चाहिए। युधिष्ठिर को भी बहुत शोक हुआ अभिमन्यु के वध में। युधिष्ठिर ने बोला मेरे राज सिंहासन को भोगने की लालसा हवस के कारण मैंने एक छोटे बालक को चक्रव्यूह में डाल दिया। उसकी आयु थोड़ी थी, उसको तो खेलने कूदने की आयु थी, और मैंने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, धिक्कार है मुझे। और युधिष्ठिर इस तरह से शोक कर रहे थे। और तभी फिर वहां पे व्यासदेव प्रकट होते हैं। व्यासदेव ने उनको शिक्षा दी, बोले क्यों शोक कर रहे, तुम्हें मालूम है अभिमन्यु कहां गया? अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की है जो कि बड़े बड़े योद्धाओं को भी प्राप्त नहीं होती। तो व्यासदेव के इस संदेश से पूरा का पूरा युधिष्ठिर का दृष्टिकोण बदल गया। ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में भी जो लोग शोक करते थे लेकिन उस शोक को सपोर्ट करते थे दिव्य ज्ञान से। आजकल लोग जो शोक करते हैं मूर्खतावश शोक का और बढ़ाते हैं शोक से, वो कुछ दिव्य ज्ञान नहीं देते, वो और आंसू देते हैं, वो केवल एक्टिंग के बस। हम याद है बचपन में जब किसी की मृत्यु हो गई किसी संबंधी की, तो माता जी लोग जा रहे हैं उनको यहां शोक करने के लिए, और सब जा रहे हैं आपस में बातचीत करते हुए, मार्केटिंग करते हुए, इधर की बातें करते हुए। जैसे ही वो गेट में प्रवेश करने लगती थी, पता नहीं क्या गाना शुरू करती थी, हाय हाय हूं करके वहां से रोना शुरू होता था, और दोनों गले मिलती थी, कुछ पुराने गीत गाती थी, रोना धोना शुरू। उसके बाद पूछा बैठते थे, चाय आती थी, बिस्किट के साथ चाय खाते। क्या शोक है ना, इग्नोरेंस, अज्ञानता का वातावरण होता है, सब ऐसे ही रो रहे हैं, है ना। कई बार जब भक्तों के कुछ परिवार में किसी किसी की मृत्यु होती है तो कई भक्तों को इनकरेज करते हैं, आइए कीर्तन कीजिए, खुल के कीर्तन कीजिए, मृदंग भी बजाइए, करताल भी बजाइए। कईयों के परिवार में इतने सपोर्टिव रहते हैं, मृदंग नहीं करताल धीरे धीरे, बहुत हल्के बहुत हरे कृष्ण बस, और कीर्तन की आवाज कम हो, रोने की आवाज ज्यादा हो। क्योंकि जब कीर्तन की आवाज आ रही है लोग सोचे खुशियां मना रहे हो, और रोने की आवाज आएगी देखो रोते हैं, इनको अटैचमेंट है, कितना बड़ा व्यक्ति, इतने लोग रो रहे हैं इसके लिए दिखावा। वैसे तो आजकल ये भी नहीं रह गया, शोक की तो बात छोड़ो, लोग फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आते, कोई करता भी नहीं शोक। एक बार एक भक्त गांव में प्रचार करने गए, एक बूढ़ी माँ उसके पास आई, बोले 5 रुपए ले ले स्वामी जी और मेरी प्रार्थना करो मैं जल्दी मर जाऊं। बोले क्यों माता ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कोई ध्यान ही नहीं रखता, ये जीना भी कोई जीना है, मेरे बेटे मेरे सामने लड़ाई करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन लेगा, तो मर जाओ बेकार है मुझे। तो आजकल तो होता ही नहीं, लोग शमशान घाट में भी जाते हैं, मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं, वेट करते हैं कभी लकड़ी गीली क्यों है, जल्दी क्यों नहीं चल रहा फटाफट, है ना। क्रियाएं होती हैं, शोक सभाएं होते हैं, 3 से 4 का समय है, लोग 3:55 पे आते हैं शक्ल दिखाने के लिए, कोई शोक सब किसी को है ही नहीं। तो हम बोलेंगे शोक को कैसे डील करना, बोले शोक तो होता ही नहीं हमें। लेकिन फिर भी वैदिक संस्कृति देखिए कि अगर कोई शोक करता भी था उसके साथ दिव्य ज्ञान के द्वारा, तो व्यासदेव जी ने उनको बोला कि उसने वीरगति प्राप्त की है, तो युधिष्ठिर का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। और हालांकि अभिमन्यु की जो शव वहां पड़ा है, और अब युधिष्ठिर महाराज का दृष्टिकोण जब बदला, उन्होंने व्यासदेव से पूछा कृपया करके मुझे बताइए मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों आती है, कैसे आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। शव अभिमन्यु का पड़ा है और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर व्यासदेव ने उत्तर देना शुरू किया, यानी कि भागवतम क्लास शुरू हो गई, मृत्यु के समय भी भागवतम क्लास बंद नहीं हुई। ये हैं व्यासदेव जी, और व्यासदेव ने पूरा संदेश देके चुपचाप वहां से चले गए। ये नहीं कि उन्होंने भी बैठ के युधिष्ठिर महाराज के साथ रोए ना। तो ये है भक्तों का आचरण। इसी ढंग से हम देखते हैं यही युधिष्ठिर महाराज और जो धृतराष्ट्र के लिए भी उन्होंने शोक किया। ये युधिष्ठिर महाराज का चरित्र है, जो अच्छे भक्त होते हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है और वो बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज लगे अरे सबकी मृत्यु मेरे कारण हुई, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के बहुत अच्छे ढंग से उनको संभाल के रखा, उनको वो राजा कहकर संबोधित करते थे। लेकिन विदुर आ गए सारा भ्रमण करके तीर्थ यात्रा करके, और विदुर ने देखा धृतराष्ट्र आराम से बैठे हुए हैं और राजा बन के बैठे हैं। विदुर को बहुत क्रोध आया और विदुर ने करुणावश धृतराष्ट्र को इतना सुनाया, बोले कुत्ते की तरह पड़े हो यहां पे, शर्म नहीं आती। तो धृतराष्ट्र तो पूरा पूरा दृढ़ था, नहीं छोड़ के जाऊंगा, पकड़ के रखूंगा गद्दी को। लेकिन विदुर भी पूरे दृढ़ थे कि इसको छुड़वाना ही है। तो जब भक्तों की दृढ़ता भौतिकवादी लोगों की दृढ़ता से ज्यादा हो जाती है तो वो फिर भक्तों पर कृपा होती है। तो विदुर की पूरी दृढ़ता थी कि इसको तो छुड़वाना ही है, मुक्त करना ही है। तो विदुर के ऐसे कड़वे संदेश सुन के धृतराष्ट्र और गंधारी रात को ही छोड़कर चले गए, और जब अगले दिन युधिष्ठिर ने देखा कि धृतराष्ट्र नहीं है तो युधिष्ठिर बहुत शोक करने लगे कि कहां गए हमारे पिता जो कि सर्वगुण संपन्न थे, जिन्होंने बचपन से हमारा इतना ध्यान रखा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो धृतराष्ट्र के लिए भी शोक करेगा? युधिष्ठिर एकमात्र व्यक्ति थे जो धृतराष्ट्र के लिए भी शोक कर रहे थे, बहुत शोक कर रहे। लेकिन फिर वहां पे प्रकट होते हैं नारद मुनि। नारद मुनि वो कहते हैं, युधिष्ठिर क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारी क्या स्थिति है? काल सर्प के द्वारा प्रतिक्षण आप निकले जा रहे हो। जब आप स्वयं काल सर्प की गिरफ्त में हो तो आप किसी की रक्षा क्या करोगे? पहले अपने आप को तो बचाओ। तो ये है वैदिक जो सिद्धांत, बहुत ही कटिंग और शार्प। तो ये सुन के युधिष्ठिर की आंखें खुली। एक बार एक भक्त थी, माता जी थी, उनकी छोटी बेटी को कैंसर हो गया, और छोटी सी बच्ची थी और कैंसर भी लास्ट स्टेज में, और रोते हुए शिला प्रभुपाद जी के पास आई, और वो अपेक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कुछ सिंपेथाइज करेंगे कि बहुत गलत हो गया ये सब। तो जब प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि इसको कैंसर है, अंतिम स्थिति पे है, तो प्रभुपाद जी ने कहा यू एंड मी आर द नेक्स्ट वन टू गो, अब अगली बारी तुम्हारी और मेरी है, गेट रेडी, तैयारी करो, गेट रेडी, चैंट हरे कृष्णा विद मोर डेस्परेशन, हरे कृष्णा का जप करो और तीव्रता के साथ। प्रभुपाद जी ने ये संदेश दिया, ये नहीं सिंपेथाइज किया हो ये तो बहुत बुरा हो गया, कैसे हो गया नहीं। तो ये आचार्यगण इस ढंग से डील करते थे। तो नारद मुनि ने तुरंत बोला कि तुम स्वयं काल सर्प के ग्रस्त में हो तो तुम क्या किसी को बचाओगे? ये सुनकर युधिष्ठिर जी का जो शोक समाप्त हुआ। फिर भगवान उनको ले गए भीष्म पितामह के पास, और भगवान ने खुद बहुत सुंदर वस्त्र डाले थे, और सभी पांडवों को बोला कि वो भी अच्छे ढंग से सुसज्जित होकर जाए। जब भीष्म पितामह ने पांडवों को देखा, उन्हें बोला कि कैसा ये भगवान की लीला है कि भगवान आपके साथ हैं, भगवान के द्वारा आपकी रक्षा हो रही है, वैदिक मंत्रों से आपकी रक्षा हो रही है, ब्राह्मणों द्वारा आपकी रक्षा हो रही है, फिर भी आप इतने कष्ट कैसे? लेकिन भीष्म पितामह ने जब उनको संदेश दिया और भगवान के दर्शन किए तो भीष्म पितामह का भी शोक दूर हुआ। तो हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में ये आध्यात्मिक विवेचना से हम शोक के विजय प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में दूसरा और चरित्र आता है गंधारी का। गंधारी का भी क्षेत्र बहुत ऊंचा चरित्र है। गंधारी अफगानिस्तान के राजा गंधार क्षेत्र से थी, और बहुत सुंदर थी, और सौभाग्यशाली थी कि उसका पूर्व परिवार में विवाह हुआ। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह था कि धृतराष्ट्र से विवाह हुआ जो कि अंधे थे। तो गंधारी इतनी सती स्थिति थी, उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी, पूरा जीवन पट्टी बांध के रखी, और वह अच्छी भगवान की भक्त थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पूरी सभा में गंधारी एकमात्र स्त्री थी जिसने इसका विरोध किया। वह अबला स्त्री होने के कारण वो कुछ रक्षा नहीं कर पाई, उसने उसका पूरा विरोध किया। इसके बाद जब भगवान शांतिदूत बनकर आए, और शांतिदूत बनकर आए भगवान ने बोला कि तुम्हारा इस कारण दुर्योधन के कारण सर्वनाश हो जाएगा, इस दुर्योधन को पशुओं की तरह बंदी बनाकर युधिष्ठिर के हवाले कर दो, तो कोई भी नहीं मान रहा था। तो धृतराष्ट्र ने गंधारी को बुलाया, और गंधारी ने पूरी राज्यसभा में धृतराष्ट्र को डांटा कि आप मोह के कारण अंधे हो गए हो। तो गंधारी का चरित्र था, वो भगवान की भक्त थी। लेकिन हम देखते हैं कि गंधारी का चरित्र इतना ऊंचा था, फिर भी ऐसी परिस्थितियां आई कि दो बार ही उसने शोक में परिस्थितियों का सामना किया और उसको सही ढंग से उसके साथ डील नहीं कर पाया। पहली परिस्थिति कब आती है? जब कुंती महारानी गर्भवती होती है और कुंती महारानी युधिष्ठिर को जन्म देती है। जब युधिष्ठिर को जन्म दिया कुंती महारानी ने, और गंधारी को ये मालूम चला, वो भी गर्भवती थी, तो उनका इतनी ईर्ष्या हो गई कि कुंती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसने अपने भ्रूण के ऊपर अपने मुष्टि से प्रहार किया और उसका गर्भपात हुआ, और उस मास के लोटे को व्यास जी ने 100 टुकड़े में बट गए और 100 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। लेकिन ईर्ष्या के कारण ऐसा हुआ, सारे के सारे 100 पुत्र ईर्ष्यालु, मुख्यतः दुर्योधन। कुछ समय के लिए ईर्ष्या आई, उसको शोक हुआ, ईर्ष्या हुई, और उसके कारण 100 पुत्र सबके सब ईर्ष्यालु। उसके बाद जब युद्ध हुआ और युद्ध में सारे के सारे सोपुत्र मारे गए, तो फिर गंधारी को बहुत क्रोध आया और फिर गंधारी ने उस शोक को सहन नहीं कर पाई, तो गंधारी ने क्या किया, कृष्ण को शाप दे दिया, कृष्ण पे आरोप लगाया कि आपके कारण मेरे सोपुत्र मारे गए। यही अंतर था गंधारी में और महारानी कुंती में। कुंती ने भी इसी का सामना किया, लेकिन कुंती ने भगवान पे आरोप नहीं लगाया, बल्कि भगवान को बोला और कष्ट दीजिए। जब युद्ध समाप्त हो गया बोले कंफर्टेबल नहीं लग रहा कुछ, और कष्ट दो, कष्ट सहने की आदत पड़ी, हमें डर है कि हमको भूल ना जाए, और कष्ट दीजिए। लेकिन गंधारी के ऊपर कष्ट आए तो उसने भगवान को ही श्राप दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, भगवान ये नहीं देखते आपने मुझे श्राप दिया तो ठीक है, आपने जो अभी तक भक्ति की थी, जो पुण्य कर्म किए थे सब खत्म, नहीं, भगवान उनको फिर से मौका दिया। कैसे मौका दिया, विदुर के रूप में, विदुर आए, विदुर ने उनको ज्ञान दिया और फिर उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। फिर है गंधारी, गंधारी सही ढंग से भगवान और भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान की शरण नहीं ले पाई, तो उसने किस ढंग से शोक के समय वो विचलित हो गए। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्श्वों में भी ये बहुत ही जगह की प्रकृति है, और चैतन्य महाप्रभु पार्षद श्रीनिवास ठाकुर के यहाँ पे महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, उनकी संतान की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु, घर की स्त्रियां शोक करने लगी। श्रीनिवास ठाकुर ने बोला देखो अगर शोक करना भी है तो धीरे रहो, ज्यादा जोर से नहीं, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु का संकीर्तन चलता है। कुछ समय के बाद लगभग 7 घंटों के बाद महाप्रभु को मालूम चला कि इनके घर में मृत्यु हो गई है, और फिर महाप्रभु वहां गए और उन्होंने मालती माता को बोला कि तुम्हारे एक पुत्र नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, स्वयं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्श्वों में चैतन्य महाप्रभु होते हुए भी उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं हमारे आचार्यगण श्री रूप गोस्वामी जी, उनको महाप्रभु ने भेजा, जाइए वृंदावन में आप शास्त्रों की रचना भी कीजिए और अर्चनों की स्थापना भी कीजिए। रूप गोस्वामी वृंदावन गए, इतनी कठिनाइयों का सामना किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर भी रूप गोस्वामी शोक कर रहे हैं कि मैं महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा। क्यों, उन्होंने मुझे बोला था कि अश्वग्रह की स्थापना करो, तो उनको गोविंद नाथ जी मिल नहीं रहे थे, बहुत खोज रहे थे घर घर जाके गांव गांव में, लेकिन उनको कोई विग्रह नहीं मिल रहे थे, तो बहुत शोक में परिस्थिति में थे। उनको ये नहीं था, गर्व नहीं था, अब इतने शास्त्र तो लिखे दिए कोई बात नहीं, काफी काम हो गया, नहीं, तो भक्त लोग शोक करते हैं कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। शिला प्रभुपाद जी संन्यास लेकर दिल्ली में आए, दिल्ली में आके बैकवर्ड मैगजीन्स खुद लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, बांट रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल अकेले हैं। एक बार एक बैल आया और उनको पीछे से मार के चला गया, प्रभुपाद गिर गए और प्रभुपाद सोचने लगे क्या है, मैंने कहां गलती की है, सब कुछ ठीक कर रहा हूं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। प्रभुपाद के हृदय में ये बात आई कि प्रभुपाद ने तुरंत अपने आपको संभाला कि मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो प्रभुपाद कई बार हार्बर में जाते थे, बोले भारत वापस कब जा रहा है जहाज, और पूरा मन बना लिया था कि ठीक है अब मेरे को जाना ही है। फिर उनको भक्ति सिद्धांत महाराज सरस्वती ठाकुर जी के आदेश याद आते थे कि पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, तो प्रभुपाद आगे बढ़ते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के जीवन में भी ये कठिनाइयां आती हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। भक्ति करते हुए ये सोचेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में सारी आर्टरीज क्लियर आएंगी, कोई कैंसर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डेंगू फीवर से बचूंगा, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाएंगे अपने आप, चमत्कार चमत्कार हर जगह होगा, मिट्टी को हर लगाऊंगा सोना बन जाएगा, सभी सब शुभ शुभ होगा, ऐसा नहीं होगा। बी रेडी फॉर इट, ये तैयार, ये बहुत ही जगत की प्रकृति है। महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, महाप्रभु ने बहुत आसान सा एक विधि दी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत आसान सी विधि दी है, लेकिन महाप्रभु ने इस भौतिक जगत की प्रकृति को नहीं बदला। बोलो ये तो आपकी जिम्मेवारी रहेगी, इस भौतिक जगत के द्वंद को सामना करना आपकी जिम्मेवारी है। और हम लोग देखते हैं कि संसार में एडजस्टमेंट करते करते ही पूरा जीवन निकल जाता है ना।
ये कर लो ये कर लो, द्वंद को एडजस्ट करते करते हम इतना थक जाते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है और हाथ में कुछ लगता है। इस संसार में द्वंद्वों के बीच में जीना ऐसे ही है जैसे कि नया नया हमारा संगमरमर का फर्श है और इसके ऊपर तेल डाल दिया जाए और बोले अब चल के दिखाओ, भाग के दिखाओ। कोई भागेगा नहीं, एक एक पांव सोच समझ के रखेंगे, फिर एक पांव रखेंगे, फिर एक पांव रखेंगे, ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे और एडजस्ट करते करते ही समय समाप्त और कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो ये हमें अपने मन को प्रशिक्षित करके रखना पड़ेगा। ये द्वंद्वों का जगत है, अचानक कभी दुख आता रहेगा। चित्रकेतु महाराज को दर्शन हुए भगवान के, स्वयं दर्शन दिए, बड़े आराम से वो आ रहे थे, गंधर्वों के राजा बन गए, शिव जी से थोड़ा सा उपहास किया, तुरंत असुर बन गए, एक क्षण में परिस्थिति उल्टी। तो ये द्वंद के लिए हमें खुद सामना करना पड़ेगा। प्रोसेस आसान है, लेकिन प्रोसेस इज इजी बट इट इज नॉट इजी गोइंग, इजी गोइंग नहीं है कि चलो जी अब तो सब बढ़िया धड़ाधड़ हो जाएगा। बहुत द्वंद्वों से हमें जूझना ही पड़ेगा। और अक्सर देखते हैं जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे अच्छे भक्त लोग माला छोड़ देते हैं। जब भी भक्तों के जीवन में कष्ट आता है सबसे पहले वो बोलते हैं ये सबसे बड़ा जो कष्ट आ रहा है इस माला के कारण, और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। देखो तो हम पहले से ही समझा रहे थे और जाओ मंदिर में है ना, हरे कृष्णा करता रहता है आप देख। और फिर भक्त भी सोचता है यार मैंने तो सबके साथ तोड़ भी दिया, रिश्तेदार भी नहीं रहे, दोस्त भी नहीं रहे, और भक्त लोग भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उल्टा, कहां जाऊं, क्या हो गया, मैं तो फंस गया, सारा जीवन बर्बाद हो गया। होता है 10 साल 15 साल के बाद कई बार लोग भक्ति छोड़ देते हैं, हमको डरा भी नहीं है कृपया करके डरने डरा भी नहीं, लेकिन वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि शुरू से हमने सही ढंग से अपने आप को प्रशिक्षण नहीं दिया तो कहां हम फंस जाएंगे। गलत उम्मीद रखना भक्ति से है ना, या अति स्तुति रखना वैष्णवों के, अति ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिवोटीज, ओवर एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन, नॉट ओवर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। भक्ति को समझना है, संबंध ज्ञान को जानना है, भौतिक जगत की प्रकृति को समझना है, कष्ट होंगे ही होंगे, और इन्हीं कष्टों के बीच में, इसी द्वंद के बीच में ये जो आसान सा प्रोसेस है इसको छोड़ना नहीं, इसकी शरण पकड़ के रखनी है तो निकल जाएंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इन्हीं द्वंद्वों को जूझने में लगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो शोक मोह शोक है ये इमोशंस हैं, ये समुद्र में तरंगों के समान है, समुद्र में तरंगे आएंगी ही आएंगी, अब निर्भर करता है कि हम इसका कैसे झेल रहे हैं। हमें ऐसे ढंग से अपने आप को तैयार करना है कि इन तरंगों से हम ऊपर उठ सकें और सीधा भगवत धाम जा सकें। ये तरंगों को हम रोक नहीं सकते, तरंगे आएंगे ही आएंगे। तो हमें अक्सर है कई लोग बोलते कहूँ जी ये डर है मैं पतित ना हो जाऊं, भक्ति से गिर ना जाऊं, तो गिरने का तो हमें डर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम पहले से ही गिरे हुए हैं, ये ऑलरेडी फॉलन। ये कहना कोई बोले कि नहीं मुझे गिरने का डर है इसका मतलब पहले से गिरा हुआ है, बोला इसका मतलब आपकी स्थिति बहुत ऊंची है तभी गिरोगे ना, वी आर ऑलरेडी फॉलन पतित। और ये पतित पावन प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु हमारे पास हैं, उन्होंने प्रोसेस दिया है। डर यही होना चाहिए कि द्वंद्वों में उलझ कर हम कंफ्यूज ना हो जाए, विश्वास और श्रद्धा ना कम हो जाए। इसलिए खूब प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए भी कि हमें हम बचा के रखें, अगर मैं भटक रहा हूं तो आप पकड़ लेना मुझे। जब ऐसी परिस्थितियों में और दम में परिस्थितियों में फंसे पुकारे नारद मुनि जी को, व्यास देव जी को, विदुर को, भैया आप आइए किसी भी रूप में मेरे शोक और मोह को समाप्त कीजिए और मैं जकड़ के रखूंगा इस हरे कृष्ण महामंत्र को और भक्तों के संघ को। परीक्षित महाराज मृत्यु का श्राप मिल गया, शोक नहीं किया, रोए नहीं, क्या हो गया मुझे, बदला नहीं लिया श्रृंगी ऋषि से, किसकी शरण ली, ऋषियों की शरण ली, पूछा एक मृत्युवासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी से सुना, सुखदेव गोस्वामी ने भी पहले उनको शरीर आत्मा का ज्ञान दिया, फिर भगवान के विषय में बताया और फिर चले गए। ये नहीं वेट की जो देखते हैं अब आएगा तमाशा, चलो फाइनल क्लाइमैक्स देखते हैं मेरा शिष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त करता है और मेरा भी गुणगान होगा देखो कैसे हुआ, नहीं, संदेश दिया चले गए। उसके बाद परीक्षित महाराज ने भी जब देखे उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने भी शोक नहीं किया, अरे अंतिम समय में मेरे गुरु मुझे छोड़कर चले गए, अरे देखो कोई मेरे संबंध में मेरे साथ में नहीं है, ये क्या है अकेला छोड़ के चले गए मुझे, नहीं, उनको मालूम था मेरे साथ ये दिव्य ज्ञान है, मेरे साथ भगवान है, और फिर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। कुछ समय के लिए सभी देवताओं ने आहा किया, शोक किया, आहा ये क्या हो गया। कोई भी भक्त जब शरीर छोड़ता है तो दुख तो होता ही है। नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक में ही भजन गाया, जय अनिलो प्रेम घनो करुणा प्रचुर। वो ऐसा नहीं कि शोक नहीं आएगा, स्नेह है। जब भक्त लोग जाते हैं, तब महाभागवत जा रहे हैं, तो सब देवताओं ने शोक किया, लेकिन साथ में उन्होंने फूलों की वर्षा भी की। तो ये विषय बहुत गंभीर है, डराने के लिए नहीं है, लेकिन अवगत क्या कहते हैं, वार्निंग के लिए है कि हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती हैं और हम देखें इसको कैसे सामना करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आध्यात्मिक विषय की विवेचना करनी है तो हम बड़े कठोर हृदय हो जाए। जब किसी के हम देखते हैं ऐसे शोकमय परिस्थितियां आई हैं, दुखमय परिस्थितियां, तो हमें निश्चित रूप से हमें कंसर्न दिखाना चाहिए, उसके दुख को शेयर करना चाहिए, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मदद होगी, है ना, उसको उस द्वंद से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए ज्ञान के तरीके से, और साथ ही साथ में प्रेम भी देकर। केवल हम जाए शुष्क ज्ञान दे दें, हम व्यास देव नारद मुनि की नकल मारे, क्यों रो रहे हो, क्यों व्यस्त चिंता करते हो, शरीर है ये है चले जाओ, नहीं, है ना। तो हम कुछ समराइज कर सकते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी शोकपूर्ण परिस्थितियां आए तो कैसे उसे हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उस पर हम विवेचना करें। दूसरा, गुरु के आदेशों का हम स्मरण करें। तीसरा, भक्तों को बुला सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि हमें वो याद दिलाएं वो इंस्ट्रक्शंस। फिर ऐसी दुख में जब परिस्थितियां होती हैं तो हम भगवीता के दूसरे अध्याय का जो 16वां श्लोक है, ना सती विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, जो असत है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत है उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, बदलाव आएगा ही नहीं। तो शरीर और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं तो छूटेंगी छूटेंगी। अभी जो हमारे जीवन में दुखपूर्ण परिस्थितियां हैं, ये सनातन नहीं है। वर्तमान को हम शाश्वत ना समझें और शाश्वत को वर्तमान में लाने का प्रयास करें। शाश्वत क्या है? जीव स्वरूप हर कृष्ण नित्य दास, और ये हर स्थिति में हर परिस्थिति में ये उपलब्ध है हमारे लिए। तो वर्तमान में भी हम अपने शाश्वत स्वरूप को ना भूलें, उस शाश्वत रूप को लाने का प्रयास करें, ना कि वर्तमान को हम शाश्वत बना दें कि मेरा तो जीवन है ही, बचपन से ही मैं दुखी हूं, माँ के गर्भ में दुखी था, बाहर आया तो दुखी था, बीमार हूं, अभी तक हो गए, ये दुख चलता ही रहेगा। हो सकता है पूरा जीवन दुखी हो, लेकिन कोई बात नहीं, यही भगवान की इच्छा है। व्यासदेव ने युधिष्ठिर को बोला जब अभिमन्यु के ऊपर शोक कर रहे थे कि ये भगवान की इच्छा जानो, भगवान की इच्छा में हस्तक्षेप मत करो, भगवान की इच्छा के आगे अपने सर को झुकाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा समझें, भक्तों की मदद लें, विवेचना करें, सत और असत को देखने का प्रयास करें, और हमेशा ये देखें कि शोक करने से हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और हम किसी भगवान को ब्लेम ना करें। दुनिया में अधिकांशतः लोग नास्तिक तभी बनते हैं जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब माता जी लोग जाते थे चर्च में और ये प्रार्थना करते थे कि हमारे पति विजेता बन के वापिस आ जाए। कुछ के आए, कुछ के नहीं आए, जिनके आए वो तो भगवान के भक्त बने रहे और जिनके नहीं आए वो नास्तिक बन गए। तो ऐसी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे दुखमय परिस्थिति में हम देखें कि मुझसे ज्यादा भी दुखी लोग हैं, शोकपूर्ण परिस्थितियां हैं, और इन दो शोकपूर्ण परिस्थितियों में भी भक्त लोग पूरे उत्साह और दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं, उनको देखकर हम प्रेरणा लें। अगर हमारे अभी वर्तमान में ही श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिंजोलीनाथ राधा गोविंद स्वामी महाराज, हिंजोलीनाथ जयप्रदा का स्वामी महाराज, ऐसे उनके स्वास्थ्य की विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन उत्साह वैसे ही बना हुआ है। अगर कोई साधारण व्यक्ति परिस्थितियों में होता तो पता नहीं क्या कैसे वो सामना करता, लेकिन अभी भी वही उत्साह, वही सेंस ऑफ ह्यूमर, वही मेमोरी, सारे के सारे श्लोक अभी वही याद, कमाल। ये दिखाता है प्रोसेस, अगर प्रोसेस की शरण लेकर रखेंगे तो कोई द्वंद हमें सता नहीं सकते, लेकिन जहां थोड़े विचलित हुए तो ये जो द्वंद है, ये माया, ये समस्याएं इतनी ओवरवेलमिंग है, इतना हमारे ज्ञान को ठग देती हैं कि हम बह जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। यदि कोई टिप्पणी या कोई विषय
जी मेरे दो प्रश्न थे. एक तो जैसे प्रजा ने बताया कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम भक्ति, तो भक्ति से सही एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब
भक्ति से सही एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं हमेशा भक्ति में लगा रहा हूँ, यही प्रार्थना होना चाहिए. ना धनम ना जन्म ना सुंदरिन कविता माँ जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्तात भक्ति हेतु की, कि मेरा प्रेम मेरी आसक्ति भगवान के चरणों में और बढ़े, यही एक्सपेक्टेशन
है. दूसरा प्रश्न था, जैसे यहाँ बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करके हम शोक से मुक्त हो सकते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम उस स्थिति में होते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी कर रहे होते हैं तो उसमें एक ही चीज के इतने अलग अलग पहलू होते हैं. जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे. अभी हम उसको अध्यात्मिक उससे ऊपर उबार रहे हैं, शास्त्र एक बिल्कुल कट भी करते हैं साधु और बहुत सेंसिटिव भी रहते हैं, मतलब ये उसका अलग पहलू.
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. या अलग अलग परिस्थितियां होती है, कई बड़ी साधु बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई बड़े साधु बहुत कटिंग होते हैं विदुर की तरह. तो मापदंड मेरी समझ से ये है, मापदंड ये है कि हमारा रेगुलर प्रोग्राम दृढ़ता के साथ चलता रहे. हम जो हमारी 16 माला का जब ध्यान पूर्वक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, अपनी सेवा में हतोत्साहित हो रहे हैं कि उसको किए जा रहे हैं उत्साह कर, ये मापदंड है. इसको हम ना देखें, कई तरीके हो सकते हैं और कई बार जब कंफ्यूजिंग हो तो कृष्ण बलराम से प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दे. वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस ऑल्सो एंड वी हैव टू बैक द डीटीज फॉर द इंटेलिजेंस.
आपने बताया कि हमारे को ना प्रेम करना है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है. तो जब किसी से भी प्रेम करते हैं तो अटैचमेंट एक स्वाभाविक हो जाती है, तो कैसे इसको समझे?
अटैचमेंट भौतिक स्तर पे है, अटैचमेंट शरीर के स्तर पे होती है. मैं और मेरा जब इसमें आ जाता है तो सब चीज को कृष्ण से संबंध देखने का प्रयास करेंगे तो इस अटैचमेंट से हम बच सकते हैं. जहां पर केवल उसको अपने के रूप में देखेंगे सब कुछ मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, वहां पे हमें शोक ज्यादा होगा, उससे निकलना मुश्किल होगा. और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं शोक में परिस्थितियों में तो कई बार जब भक्तों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो भक्त बोलते हैं यार मुझे मत सुनाओ, मैंने भी खूब सुनाया, हाँ मेरे को अब सुना रहे हो, अब ये दिन आगे मेरे को सुनना पड़ेगा आपसे, मैंने खूब सुनाया मुझे मत बताओ, मैं संभालूंगा, फिर कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है. प्रार्थना करें हमारी ऐसी स्थिति ना आए कभी, हम हमेशा हमारे कान खुले रहे. नारद मुनि व्यास देव युधिष्ठिर महाराज को संदेश दे सके, युधिष्ठिर महाराज सुनने को तैयार थे और कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर हम इसके केवल प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे भक्त सुनने को तैयार नहीं होते. ठीक है, सब भक्तों का हम आते लास्ट प्रश्न. यही कंट्रास्ट का ही तो बहुत ही जगत का ये नेचर है. जब बेचारे दुखी होते हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तो भक्ति का अल्टरनेटिव नया दिखाई देता है, चलो भक्ति कर ले. जो भक्ति में आके दुखी होते हैं मैं कहां जाऊंगा, सब देखो फॉर चेंज, फिर वो वहां जाते हैं. लेकिन जो सही भक्त है जिन्होंने पूरे सिद्धांत को समझ लिया है उनको मालूम है यही एकमात्र समाधान है, एकमात्र यही हमारा जीवन है. ठीक है, सब भक्तों का बहुत धन्यवाद धैर्य पुण्य सुनने के लिए. जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निदाय गो प्रेमानंदे.